ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्मिकी। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सागद्वैतं सागदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्रश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीयैतुरियो कथितो यदौरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजान्तरं दौर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टम् शिरोपितो द्वादशैव भवति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपं।
हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंध तदनंतर 19वां अध्याय उसमें छठा श्लोक श्लोक सरल ही है। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। शब्द अर्थ विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की पत्नी, महामाये हे भगवान विष्णु की शक्ति, महापुरुष लक्षणे भगवान विष्णु के गुणों एवं ऐश्वर्यों से युक्त प्रियेथाः कृपा पूर्वक प्रसन्न हो मे मुझ पर महाभागे हे लक्ष्मी की देवी लोकमातः हे संसार की माता नमः नमस्कार अस्तु हो ते तुमको। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे धन्य धान की देवी माता लक्ष्मी को सादर नमस्कार करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, आप विष्णु के ही समान श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य निहित हैं। हे धन्य धान्य की देवी, आप मुझ पर कृपालु हो। हे जगत माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे धन धान्य की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, आप विष्णु के ही समान श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य निहित हैं। वे धन्य धान्य की देवी हैं। हे धन्य धान्य की देवी, आप मुझ पर कृपालु हो। हे जगत माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, भगवान नाना शक्तियों से पूर्ण हैं, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। चूंकि माता लक्ष्मी भगवान की बहुमूल्य शक्ति हैं, इसलिए उन्हें यहां पर महामाये कहकर संबोधित किया गया है। माया शब्द का अर्थ है शक्ति। भगवान विष्णु अपनी प्रमुख शक्ति के बिना सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। कहा गया है, शक्ति शक्तिमान अभेद। शक्ति तथा शक्तिमान एक ही हैं, अतः माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के नित्य संगनी हैं, वे दोनों निरंतर साथ रहते हैं। कोई भी भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रख सकता। यदि कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए यह घातक होगा, क्योंकि भगवान की सेवा के बिना लक्ष्मी माया बन जाती है। किंतु भगवान विष्णु के संग वे निस्संदेह पराशक्ति है। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियेथा में महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवियों के चरणारविंद में मैं नमस्कार करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे श्रीमद् भागवतम का जो यथेष्ट लाभ है वक्ता और श्रोता दोनों को सही सही प्राप्त हो सके, विशेष करके मुझे। ये जो प्रसंग है इसके पूर्व आप सुनते ही आए हैं, माता दिति को देवताओं के प्रति विशेषकर इंद्र के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात है, संसार में अगर किसी को ईर्ष्या होती है तो वो कुछ भौतिक प्रयास करते हैं, या तो उसको शरीर को हानि पहुंचाना चाहते हैं, या फिर उसकी शरीर से संबंधित जो वस्तु है उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं। कृपया सभी लोग मोबाइल अपने अपने साइलेंट मोड पर कर लें, जिससे आगे कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो संसार में तो ये होता है कि व्यक्ति अपने प्रयास से किसी भौतिक देह देही को, या फिर उनके देह से संबंधित जो देही हैं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, आत्मज जो भी हैं, या पशु, या फिर उसका धन धान्य या ग्रह, इसको हानि पहुंचाकर वो उस व्यक्ति विशेष को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन माता दिति पे बड़ा ही अनुग्रह है कि वह अपने भक्तिमय पति कश्यप मुनि के पास जाती हैं और अपना जो मंतव्य है वो प्रस्तुत रख करती हैं और बोलती हैं कि मुझे इन लोगों से बड़ी ईर्ष्या है। इन दैत्यों ने मेरे जितने भी बालक हुए उनके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं किया है, अब मैं इनको कुछ दंड देना चाहती हूँ, तो कृपा करके आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे इनका या तो अनिष्ट हो या इनका वध हो जाए किसी प्रकार से। कश्यप मुनि समझ गए कि अगर मैंने इनको अभी बता दिया कि एक हफ्ते में या दो हफ्ते में पूर्ण होने वाली वस्तु, तो निश्चित कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो इस विधि को जब वो बताएंगे तो इस व्रत की जो विधि है इसमें भगवान विष्णु की ही उपासना होती है, नारायण लक्ष्मी की, लेकिन जो काल है वो एक वर्ष का है, क्योंकि इनका जो प्रयोजन है वो निकृष्ट प्रयोजन है, किसी को हानि पहुंचाना। तो भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि अगर कोई भगली किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी भक्ति करता है, तो अगर निरंतर वो सही भक्ति कर रहा है तो एक कालावधि के बाद उसमें इतनी योग्यता आ जाएगी, इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, और भगवान उस पर कृपा भी करेंगे कि उसके अंदर जो मलिनता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, विशेष रूप से जो मत्सर ईर्ष्या का भाव है, वह उसके हृदय से निकल जाएगा, निस्सृत हो जाएगा। तो यह भक्ति की महानता है। तो उनके जो पति हैं वह इसको जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये व्रत बताया कि जो एक वर्ष का है। माता अदिति भी एक व्रत करती हैं, पयोव्रत व्रत, उसकी अवधि केवल एक पक्ष की रहती है, एक पक्ष भी नहीं, एकादशी पड़वा से प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और एकादशी तक जाता है, फिर द्वादशी को पारना, मतलब 12 दिन का व्रत हुआ वो, उसमें केवल पयोव्रत करके रहना पड़ता है। लेकिन उनकी भावना अच्छी थी कि वह भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, है ना, कि भगवान मेरे पुत्र रूप में आए जिससे मेरे बच्चों की सहायता हो। दोनों में भावना यह है कि अपने बालकों का कल्याण करना चाहती हैं, अपने आत्मजों का कल्याण करना चाहती हैं, लेकिन एक भावना ऐसी है कि उसको हानि पहुंचा के। माता अदिति चूंकि देवताओं की माता है तो उनमें ऐसी भावना नहीं है कि इनकी कोई हानि हो, इनकी भावना है कि हमारे जो पुत्र है वो सदा सर्वदा राज्य सिंहासन पर बैठे, मतलब स्वर्ग के जो आसन है उसी पर आरूढ़ रहे, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से प्रस्ताव किया। तो इसलिए कश्यप मुनि ने इनको एक वर्ष का आगे जाके बताएंगे। पहले इस व्रत में बताया गया है जैसे कि भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु के कल दो तीन श्लोकों में जो जो ऐश्वर्य है कि भगवान कैसे निरपेक्ष हैं, भगवान कैसे सभी के लिए सर्वात्मा हैं, भगवान कैसे सर्वशक्तिमान हैं, ये सारे विशेषण हम भगवान के विषय में सुनते आए हैं। फिर तदनंतर भगवान विष्णु की उपासना के पश्चात आज बताया जा रहा है कि जब ये व्रत करें पुंसवन व्रत तो माता लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए और विशेष रूप से उनको संबोधित करते हुए उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, ये आज हम देखेंगे। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ये सारे लगभग संबोधन ही है। विष्णु पत्नी, महामाये, वैसे महामाया होता है लेकिन जब संबोधन में व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो माये हो जाते हैं, राधा का राधे हो जाता है ना, लता का लते हो जाता है। इसी प्रकार से महामाये, विष्णु पत्नी भी संबोधन है, वैसे पत्नी दीर्घ में होता है लेकिन यहाँ पे हर्ष हो गया है, मतलब ये संबोधन है। महापुरुष लक्षणा, जैसे गुणा किसी स्त्री का नाम हो सकता है या गुणवती, लेकिन जब संबोधन में जाएगा तो गुणवते हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी प्रकार से महापुरुष लक्षणे, महापुरुष ये भगवान विष्णु को संबोधन करता है लेकिन महापुरुष के लक्षणों से युक्त वाली जो लक्ष्मी है अर्थात श्री, वह मतलब जैसे टीका में और अर्थ में स्पष्ट ही है कि भगवान विष्णु और जो उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी है दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे कहा भी जाता है अंतरंग शक्ति मतलब वह वही है, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। अगर शक्तिमान की शक्ति नहीं रहे तो वह शक्तिमान किस बात का, शक्तिमान व्यक्ति इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसके पास शक्ति है। फिर कह रहे हैं प्रियथा में, प्रियथा मतलब ये यहां पे माता से प्रार्थना की जा रही है कि हे धन्य धान्य की देवी आप मेरे ऊपर क्या करें, कृपालु हो, मेरा प्रिय करें, प्रिय विधान करें, प्रियथा में। फिर आगे के फिर विशेषण ही विशेषण है, संबोधन ही संबोधन है, महाभागे लोक माता नमोस्तुते, हे महाभाग। भाग शब्द, भग शब्द सभी लोग जानते हैं, भग शब्द ऐश्वर्य को बोधक करता है और जो ऐश्वर्य जिसमें निहित रहे वो भाग तद्धित प्रकरण से होता है, तो ऐश्वर्य में जो निहित है वो महाभाग, मतलब जो लक्ष्मी जी हैं वो सदा अपने प्रिय विष्णु अर्थात अथवा नारायण की सारी शक्ति को अपने पास निहित रखती हैं। ये यहां पे भाव हुआ। नमोस्तुते, आपको मैं नमस्कार करता हूं। इसमें लक्ष्मी जी के बारे में विशेषकर बताया गया है। लक्ष्मी जी कि अगर स्वरूप देखे जाए तो एक श्लोक आता है दसम स्कंद में, नाग पत्नी के द्वारा जो स्तुति की गई है भगवान की, जब भगवान काली हृदय पे नृत्य कर रहे थे कालिया नाग के ऊपर, उसी समय नाग पत्नियां उपस्थित होती हैं और भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां करती हैं, बड़ी ही गूढ़ स्तुतियां हैं नाग पत्नियों की। उसमें एक श्लोक आता है और उस श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी पाद लक्ष्मी जी के तीन स्वरूप का वर्णन करते हैं। वैसे जैसे आप लोग समुद्र मंथन के बारे में सभी लोग जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी, उन रत्नों में एक रत्न श्री लक्ष्मी जी भी थी, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब वो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी तो किसी के मन में भी ये वांछा नहीं हुई कि इनको ग्रहण किया जाए या इनको अपनाया जाए। जैसे असुरों के मन में तो हो गया था क्योंकि वो असुर हैं, लेकिन जितने भी देवता थे उनके मन में यही भाव आया कि ये हमारी जगत माता है। और फिर अंतोगत्ता वो भगवान अजित को ही प्राप्त हुई थी जो लक्ष्मी जी थी। लेकिन अब जैसे कल दीपावली है, कल या परसों जैसा तिथि अनुसार, तो दीपावली के दिन तो सभी आकांक्षा रखते हैं कि हमारे पास खूब लक्ष्मी आए। तो अब ये कौन सी लक्ष्मी है ना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास खूब लक्ष्मी रहे। तो जो लक्ष्मी उधर उद्भूत हुई थी रमा, और ये जो लक्ष्मी है इनको कहते हैं श्री, श्री संपदा। और जो भगवान की अंतरंग प्रिया है उनको रमा कहते हैं। अब भगवान की जो अंतरंग प्रिया है रमा देवी, उनकी तो कोई याचना कर नहीं सकता। जो भी सद्भक्त होगा या फिर जो वैदिक मार्ग का अनुगामी होगा वो भगवान की प्रिया की तो लालसा कभी कर ही नहीं सकता, बल्कि चरण वंदन ही करेगा। लेकिन भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति स्वरूप में है, जिसके माध्यम से हम भगवान की ही सेवा करते हैं, उस श्री की सभी भक्त वांछा रखते हैं। मतलब स्वर्ण मुद्रा के रूप में या आजकल की जो मुद्रा है, जो व्यवहार की मुद्रा है, उसके रूप में जो भी है, उन सभी के माध्यम से हर कोई श्री की आकांक्षा रखता है। लेकिन उनका ही एक स्वरूप है लक्ष्मी का रमा, जो भगवान की अंतरंग प्रिया है, उनकी कोई आकांक्षा नहीं रखता। वो भगवान की नित्य संगनी है, उनको तो माता की तरह ही देखा जाएगा। लेकिन ये जो श्री है ये भी उनका ही एक वैभव विलास है, जो अपने को विस्तार करके पूरे जगत में व्याप्त करती हैं। व्याप्त करने का भी उनका उद्देश्य यही है कि जिससे भगवान की सेवा सही रूप से हो सके। मेरे जो प्रिय है नारायण या विष्णु, हर एक जीव उनकी सेवा में इसको प्रयुक्त कर सके। अब जो कोई उस श्री का या उस वैभव का प्रयोग भगवान नारायण की सेवा में नहीं करता, तब वही श्री माया बन जाती है। श्री प्रभुपाद ने भी यही बताया कि यदि कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए घातक होगा, क्योंकि भगवान की सेवा के बिना लक्ष्मी माया बन जाती है। तो इसलिए खूब सारी धन धान्य रखना, खूब संपदा रखना, इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत सारे भक्त हुए उनके पास खूब वैभव रहा, रूप गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी पास, इनके पास क्या कम वैभव था, है ना, नाव भर भर के जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनके पास। तो वैभव होना, लक्ष्मी होना, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उस वैभव को अपनी आत्मेंद्रिय, है ना, जैसे बोला भी गया आत्मेंद्रिय प्रीति वंचय तारे बोले काम, कि उसको ही काम कहा जाता है। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति, अगर कृष्ण की प्रीति के लिए वही चीज अगर प्रयोग कर दी जाए तो वही भगवत सेवा में परिवर्तित हो जाती है। तो एक स्वरूप तो हुआ लक्ष्मी का, ये यही स्वरूप को श्री जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं वैकुंठ लक्ष्मी। अब जो लक्ष्मी जी के तीन स्वरूप जो जीव गोस्वामी पाद ने बताए हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि पहला जो स्वरूप है जो अनंत वैकुंठ है, परम व्योम वैकुंठ, वहां पे जो लक्ष्मी रहती हैं, भगवान नारायण के साथ में जो हमेशा विलास करती हैं, जो देवी अभिमानी हैं, एक लक्ष्मी वो है। वह भक्त, वह लक्ष्मी ही जब कृष्ण का रूप देखती हैं तो उनके अंदर भी कृष्ण से संग करने की इच्छा प्राप्त हो जाती है, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो जाती है। लेकिन उनका पातिव्रत्य खंडित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जो नारायण स्वरूपा है, नारायण संगनी है, वो ऐसा सोचती है ये जो कृष्ण है ये मेरे प्रभु नारायण, इनके ही एक अंश हैं कृष्ण, ऐसा वो सोचती है। ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा वो सोचती हैं, ऐसा लिखा है इनकी टीका में जीव गोस्वामी पाद की। और मतलब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय को देखता है और अगर उसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं देखेगा तो फिर दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएगा। अगर कोई भगवान राम का उपासक है तो उसको अपने भगवान राम को ही सर्वश्रेष्ठ देखेगा वो, और किसी को श्रेष्ठ नहीं देखेगा, और उसी में ही उनकी सारी प्रियता होगी, सारी अनन्यता होगी। या फिर जो जिस भाव में रहेगा उसी भाव में ही उसकी अनन्यता रहेगी और उसी को वो श्रेष्ठ समझेगा, नहीं तो फिर वो अपने भाव में कैसे स्थित रह सकता है। जैसे भौतिक जगत में भी देखा जाता है, जैसे जो अनेक पंथ हैं, ईसाई हुआ या फिर जो यवन इत्यादि हैं, तो ये लोग भी अगर आप उनसे बात करें तो वो यही बोलेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, वो ये नहीं बोलेगा कि हम निकृष्ट हैं। तो अगर वो इस भावना में नहीं रहेगा तो उसको वो आत्मसात करके ही नहीं रह सकता ना। तो ये रहना आवश्यक है जो भी जिस सिद्धांत को मानता है उसके लिए। तो ठीक इसी प्रकार से श्री लक्ष्मी जी, इनके अंदर भी ये भाव है कि मैं देवी हूं, मैं नारायण की अंतरंगा हूं, लेकिन जब वो कृष्ण का स्वरूप देखती हैं, तो इसीलिए यहां पे नागपत्नियां प्रार्थना कर रही हैं, कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारः यदवांछया श्री ललनाचरत्तपः विहाय कामान शुचिरं धृतव्रता। तो यहां पे लक्ष्मी जी के लिए भी बताया गया है कि यद वांछया श्री ललना आचरत तपः, यद यहां पे कृष्ण के लिए, कृष्ण की जो चरण रेणु है, कृष्ण तो उनको प्राप्त है, नारायण उनको प्राप्त है, लेकिन नारायण की जो चरण रेणु है वह उनके वक्षस्थल पे या उनके माथे पे प्राप्त हो जाए श्री लक्ष्मी जी की, इसके लिए विहाय कामान अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करके, यद्यपि नारायण के साथ है उस संग को भी त्याग करके यहां बेल वन में अपने ब्रज में वो निरंतर अभी भी तपस्या कर रही है। क्यों? कि कृष्ण का उनको संग प्राप्त हो जाए। यद्यपि नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है तो उनका पातिव्रत भी खंडित नहीं होता, लेकिन उनको जो माधुरी दिख रही है, कृष्ण के प्रति जो एक विशेष आकर्षण देख रहा है द्विभुज स्वरूप में, उससे वो वंचित नहीं रह सकी और अंतोगत्वा अपने आप को तप में उन्होंने प्रवृत्त कर दिया। तो नागपत्नी वही कह रही हैं कि कस्य अनुभावो अस्य, अस्य यानी ये जो हमारा पति है कालिया, इसने पता नहीं क्या तप किया है कि ना देव विद्महे, देवता भी नहीं जानते कि इसने क्या तप किया है। तब अंग्रि रेणु स्पर्श अधिकारा, कि हे प्रभु आपके जो चरण हैं उनका स्पर्श इसके माथे पर प्राप्त हुआ है। केवल चरण ही का स्पर्श मात्र नहीं, आपकी जो चरण के जो चिन्ह हैं, कि संग चक्र गदा बहुत सारे चिन्ह हैं भगवान के, कुश है, ध्वजा है, पताका है, यज्ञ वेदियां हैं, वो सारे के सारे जितने चरण चरण चिन्हों में जो चिन्ह है, वो सारे के सारे चिन्ह इसके श्री माथे पे अब अंकित हो गए हैं। क्या क्या इसने तप किया? हमें तो नहीं लगता इसने कोई तप किया, ये तो आपकी ही कोई विशेष कृपा है मात्र, कि जिसके लिए श्री ललना आचरत तपा, अभी भी तप कर रही हैं, कर लिया नहीं, कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, सभी लोग देखते हैं। तो ये है एक स्वरूप लक्ष्मी जी का, कि जो वैकुंठ निवासी हैं, लेकिन उनके अंदर भी स्पृहा होती है कि श्री नारायण को, नारायण तो है मेरे साथ, लेकिन मैं जो कृष्ण जो स्वरूप उन्होंने देखा तो उसको फिर त्याग नहीं कर पाए। दूसरा जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और नारायण संकर्षण और जितने भी स्वरूप हैं वह उनके अंश या कला अवतार हैं। ठीक इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के भी अनेक अवतार होते हैं, वह उनके विस्तार होते हैं अंश और कला के रूप से, जो लक्ष्मी और रमा या फिर जितने भी स्वरूप हुए हैं संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, और इनकी जो अंतरंगा शक्ति होती है वह भी श्री लक्ष्मी के स्वरूप में श्री राधा रानी से विभाजित होती है, उनसे ही प्रकाशित होती है। तो इसी प्रकार से जितनी भी भगवान की सखियां हैं या अष्ट सखियां हुई श्रीमती राधा रानी हैं या फिर और भी अनंत कोटि गोपियां हैं, उन सभी अनंत कोटि गोपियों में भी एक एक अंश स्वरूप से लक्ष्मी अपना विस्तार करके वहीं उनके साथ रहती है। और उस स्वरूप से वह उनकी सेवा करती हैं। जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके साथ में जितने भी अवतार हैं नारायण हो गए, संकर्षण हो गए, प्रदुम्न हो गए, वरा हो गए, नरसिंह देव हो गए, जितने भी अवतार हैं सब भगवान के साथ अवतरित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान की गोपियां अवतरित होती है यहाँ पर लीला करने के लिए, तो उनके साथ में भी लक्ष्मी के जितने, जैसे नारायण आए कृष्ण के साथ, तो जितने भी लक्ष्मी स्वरूप हुए वह अनंत कोटि जो सखियां हैं भगवान की, गोपियां हैं, उनके साथ में तदात्म करके फिर यहाँ पे लीला विलास करती हैं, क्योंकि उनको भी, उनके अंदर भी एक आकांक्षा है। कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको तादात्म करने की कोई आवश्यकता हो, लेकिन केवल उनके अंदर भी कृष्ण माधुर्य को भोगने की इच्छा है कि देखें क्या आनंद है उनके, इतना आकर्षण वो हो जाती, इतनी बलवती हो जाती हैं वो। तो इसीलिए एक स्वरूप हुआ जो देवी स्वरूप है लक्ष्मी, एक स्वरूप हुआ जो अनंत कोटि गोपियां हैं, उनमें एक एक अंश के रूप से ये जो लक्ष्मी अपने को विस्तार करके उनकी सेवा के लिए, और या कहे कृष्ण संग प्राप्त करने के लिए उनके साथ में तादात्म्य प्राप्त करती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अष्टम अध्याय देखें दशम स्कंद का, आखिरी में एक प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने, यद्यपि वह प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं है, उनका प्रश्न था कि यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा क्या तप किया कि उनको इतना महान ये जो वात्सल्य भाव है वो प्राप्त हुआ। ये एकदम वेदों का प्रश्न है, क्योंकि नंद और यशोदा कोई तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो तो नित्य भगवान के माता पिता है। अब जो कोई नित्य है तो उसको तप करने की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है तो उन्होंने उत्तर भी उसी ढंग से दिया। अब वो क्या परीक्षित महाराज की, परीक्षित महाराज तो सब जानते ही हैं भाई, शुद्ध भक्त है वो, लेकिन उनके द्वारा ऐसा प्रश्न किया गया तो सुखदेव गोस्वामी ने भी उसी प्रकार का उत्तर दिया उनको। उन्होंने कहा कि देखो द्रोणी धरा नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने पूर्व पूर्व जन्म में प्रश्नी सतरूपा और प्रश्नी और कौन थे सुतपा, प्रश्नी सुतपा के रूप में उन्होंने तपस्या की, फिर द्रोणी धरा के रूप में उन्होंने तपस्या की, और तीसरे के रूप में नंद यशोदा के माध्यम से अवतरित होके अब कृष्ण का फिर पुनः एक बार लालन कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया। यद्यपि आचार्य पाद श्री जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती पाद दोनों ही बताते हैं इसका रहस्य। रहस्य यह है कि जब नंद यशोदा यहां पर लीला करने के लिए अवतरित हुए माता पिता के रूप में, तो उन्हीं में जैसे कि अनंत कोटि गोपियों में अनंत कोटि लक्ष्मियां तादात्म प्राप्त की जिससे वो कृष्ण संग प्राप्त कर रहे हैं, इसी प्रकार से अदिति कश्यप ये भी कई बार तपस्या करते हैं कि कृष्ण की माधुर्य का हम आस्वादन कर सकें जो बाल लीला है, क्योंकि ये भगवान से वात्सल्य भाव में जुड़े हुए हैं। अब वात्सल्य भाव में जुड़े होने के कारण वो भी तपस्या करते हैं कभी कभी, अदिति कश्यप, फिर द्रोणीधरा इन्होंने भी तपस्या की, प्रश्नी सुतपा इन्होंने भी तपस्या की कि हमें कभी किसी जन्म में भगवान की जो वात्सल्यमयी भक्ति है और हम भगवान कृष्ण को वात्सल्य भाव से उनका लालन पालन कर सके, ये उनकी अंतरंग इच्छा है और इसके कारण उन्होंने कई बार तपस्या की। तो फिर वो नंद यशोदा में तादात्म प्राप्त करके उस वात्सल्य भाव को भोगते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से गोपियों ने भी जब यहां पे अवतरण किया भगवान की अंतरंग जो प्रिया है, और उन्होंने जो लीला विलास किया, तो लक्ष्मियों को भी वो आनंद प्राप्त हो गया जो अनंत कोटि गोपियों को कृष्ण के साथ रास में या फिर अनेक लीलाओं में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। और तीसरा जो स्वरूप है श्री लक्ष्मी का, वह है जो कृष्ण के वक्ष स्थल पे रहती हैं। तो जो कृष्ण के वक्ष स्थल पे जो स्वरूप रहता है श्री लक्ष्मी का, वह कृष्ण के एक चरण चिन्ह जैसा है, और उस स्वरूप में भी लक्ष्मी रहती है कृष्ण के साथ। अब चूंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है पूरी तरीके से, तो ये भी एक प्रकार से श्री राधा रानी का ही विस्तार हुआ। तो अगर तीन भाव देखें या तीन स्वरूप देखें लक्ष्मी के, एक तो है वैकुंठ स्वरूपा, एक हो गई जो अनंत कोटि गोपियों के साथ में तादात प्राप्त किए हुए हैं, और एक है जो कृष्ण के वक्ष स्थल पर विलास करने वाली है। तो जो दो हैं कि अनंत कोटि गोपियों में जो व्याप्त हैं, और जो कृष्ण के वक्ष स्थल में है, इन दोनों ने तो श्री राधिका का अनुगत ग्रहण किया हुआ है और उसके कारण से उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई है। क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति किसी जीव को तभी होती है जब वह राधिका का अनुगत ग्रहण करता है, अन्यथा उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी में राधा रानी या फिर उनकी शक्ति स्वरूपा चंद्रावली या फिर जो भी है, उनके माध्यम से कृष्ण की उपासना करने का विधान होता है, तभी कृष्ण की प्राप्ति होती है। अगर कोई सीधे कृष्ण को प्राप्त करना चाहे तो उसको इतना आसान नहीं है, किन्हीं किन्हीं को हुई भी है लेकिन आसान नहीं है। आसान मार्ग यही है कि आप श्री राधिका का अनुगत ग्रहण करेंगे तो आपको बड़ी सरलता से ही कृष्ण के सेवा प्राप्ति हो जाएगी। ये भाव भी ठीक नहीं है, जैसे कई बार लोग परिक्रमा करते हुए बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। ये अन्य किसी के लिए ठीक हो सकता है, किसी अन्य संप्रदाय के लिए, लेकिन हम जो गौड़ी वैष्णव हैं विशेष रूप से, हम कृष्ण से मिलना नहीं चाहते। हमारी इच्छा क्या है कि हम सेवा करना चाहते हैं, है ना। यानी हमारा जो भाव है वह यह है कि हम राधा रानी का आनंद अनुगत ग्रहण करके, राधा रानी का भी नहीं, राधा रानी का अनुगत ग्रहण करना तो बहुत बड़ी बात है। राधा रानी की जो अनंत सखियां हैं, उन सखियां की जो अनंत दासियां हैं, उनकी जो अनंत दासियां हैं और उसके बाद जो हमें जो गुरु परंपरा प्राप्त हुई है, उस परंपरा के माध्यम से हम वहां पे भगवान की और श्रीमती राधा रानी की जो मंजरियां हैं, विशेष रूप से रूप मंजरी के अनुगत में हमें जो परंपरा प्राप्त हुई है रूप गोस्वामी के माध्यम से, उस परंपरा के माध्यम से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये हमारा अभीष्ट स्वरूप है। हम कृष्ण को सही सीधे नहीं चाहते। तो ठीक इसी प्रकार से तो ये तीन स्वरूप हुए लक्ष्मी जी के। अब जैसे भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे लक्ष्मी हुई ये है, इसके बारे में जब अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं, जब वो ब्रज में आते हैं तो भगवान को अनेक अनेक प्रार्थनाएं करते हैं। उसमें एक प्रार्थना में वो जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, जितनी भी हो सकती हैं, भगवान की शक्तियां अनंत कोटि हैं, लेकिन उन शक्तियों में जो कुछ प्रमुख शक्तियां हैं, उन 12 शक्तियों को उन्होंने उल्लेखित किया है। यह है श्लोक 10:39-55 दशम स्कंद का अक्रूर स्तुतियों में 55वां श्लोक है। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या तुष्टे लयो योजिता विद्या विद्या शक्तया माया चानिषेवितम। तो विद्या विद्या शक्तया माया चानिषेवितम, ये 12 शक्तियों के केवल नाम है। यह शक्तियां भगवान की सेवा में हमेशा रहती हैं, हमेशा ही। जैसे इसमें दिया है श्री शक्ति, श्री शक्ति क्या है, जो अभी हमने देखा लक्ष्मी स्वरूपा, ये क्या है, सर्व संपदा अधिष्ठात्री श्री। विश्व में जितनी भी संपदा है, स्वर्ण के माध्यम से या फिर लक्ष्मी के माध्यम से या फिर जो भी आजकल की मुद्रा है उसके माध्यम से जितनी भी संपदा है वो श्री कहलाती है, जैसा अभी हमने देखा भी था। इसकी सभी आकांक्षा करते हैं और इसका भी प्रयोजन भगवान की सेवा ही है। फिर दूसरी शक्ति है भगवान की पुष्ट्या, पुष्टि शक्ति। पुष्टि शक्ति क्या है, जैसे कई योगी होते हैं, कई भक्त भी हुए, वो एक ही रोटी खाते हैं पूरे दिन भर में, या एक छाछी पीते हैं, 3 दिन में एक छाछ पीते हैं। तो अब हम लोग तो एक दिन में 3 बार भी खा के हमें कई बार भूख लगाती है, लेकिन उन आचार्यों को 3 दिन में एक बार खा के, वो भी एक दोना छाछ मात, वो भी छोटा सा, तो उनको 3 दिन भूख नहीं लगती। तो ऐसा कैसे, तो चूंकि वो लोग भगवान की जो पुष्टि शक्ति है उससे पोषित होते हैं। गिरधरलाल जी अपनी टीका में लिखते हैं कि स्वल्प आहार अपि पुष्टा भवन्ति, कि स्वल्प आहार लिया, केवल एक फल खा लिया दिन भर में, फिर भी उनको काफी पुष्टि रहती है, शरीर में शक्ति रहती है। और कई बार अत्यधिक आहार करने के बाद भी, खूब सारा भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन एकदम कृशकाय रहता है, लटा दुबला रहता है। इसका मतलब यह है कि भगवान की जो पुष्टि शक्ति है उसका उसको अनुग्रह प्राप्त नहीं है। तो जब भगवान का अनुग्रह पुष्टि शक्ति के माध्यम से किसी जीव को प्राप्त होता है तो थोड़ा खाके भी वो अति बलवान रहता है, पुष्टवान रहता है। गी शक्ति सभी लोग जानते हैं, सरस्वती देवी, जो गायन में काम होती है, गायन में इसका प्रयोग होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की जो शक्तियां हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, भगवान से कुछ ले रहे हैं, ये सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। इस श्लोक के माध्यम से यह प्रकट होता है। कांति क्या है? काचित प्रभा। जो भी कुछ हमें प्रभा दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, किसी बल्ब का प्रकाश, ये सब का सब प्रकाश भगवान की ही शक्ति स्वरूपा है। काचित प्रभा ये कब देखने को मिलता है? राज्याभिषेक आदि न प्रकटा भवती। जब राज्याभिषेक इत्यादि होते हैं तो उसमें जो एक वैभव प्रकट होता है, एक प्रकाश पुंज और दीपक जलाए जाते हैं, जैसे अभी भी कार्तिक मास हो रहा है तो इसमें जो दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, इसमें जो शोभा प्रकट हो रही है वह कांति है, ये भगवान की ही शक्ति है। कीर्ति यश कहलाता है, ये भगवान की शक्ति है। इला भू शक्ति, जैसे भगवान की तीन शक्तियां होती हैं, भू शक्ति, संवित शक्ति है ना, और लीला शक्ति, या फिर सीधे सीधे कहे तो भू, श्री और लीला, तीन शक्तियां होती हैं। भू शक्ति में माधुर्य अधिक होता है, या फिर भगवान से जो प्रेम करने की अभिलाषा है वो अधिक होती है। तीनों में सब कुछ होगा, जो भू शक्ति है भगवान की, या इला शक्ति है, ये भगवान की वो शक्ति है जो भगवान को, यानी कृष्ण को, नारायण को, जो भी स्वरूप है भगवान के, उन स्वरूपों को वह विशेष आनंद प्रदान करती है। जैसे राधा रानी है, वो कौन सी है? हलादनी शक्ति है। यह भी इसी स्वरूप पर भू शक्ति का ही स्वरूप है। और यह इस शक्ति का मुख्य प्रयोजन होता है कि अपने प्रियतम को, या फिर जिनको प्रेष्ठ है, उनको विशेष सुख प्रदान करना, यही इस शक्ति का प्रयोजन है। तो भू शक्ति, ऊर्जा शक्ति होती है जो सर्व सामर्थ्य, या फिर जो लीला शक्ति होती है वो भी ऊर्जा शक्ति के माध्यम से प्रदर्शित होती है। अब ब्रज में लीला शक्ति क्या है, या भगवान की जो लीला शक्ति है वह क्या है? लीला शक्ति है जैसे तुलसी देवी हो गई, ये भगवान की जितनी भी लीला होती है ब्रज में। अब जैसे लीला ऐसी होनी है कि भगवान ग्वाल बाल का सुबह का समय है, गैया चराने के लिए जा रहे हैं, और मध्याह्न में जो सूर्य कुंड पे या राधा कुंड पे जो राधा रानी से मिलन होता है कृष्ण का, तो उसके लिए जो निकुंज की व्यवस्था करनी है, या फिर जो पूरा व्यवस्था जमानी है कि किस तरीके से सखियां आएंगी और सखा आएंगे, कृष्ण आएंगे, उनके बीच में जो वार्ता होंगी, और कैसे वहां का जो पैनोरमा होगा, कैसा वातावरण होगा, तो उसकी जो व्यवस्था करती है वो लीला शक्ति के माध्यम होती है। लीला शक्ति हो गई जैसे श्री, या फिर कहना चाहिए वृंदा देवी या पौर्णमासी जी, ये दो शक्तियां हैं, ये भगवान की लीला शक्ति है। मतलब भगवान जब लीला करते हैं तो वो खुद भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। तो ये कैसे होता है? ये इस लीला शक्ति ऐसा करती है, तभी तो भगवान को जटला मुखरा इत्यादियों से, अन्य लोगों से डर भी लगता है, नहीं तो भगवान को कैसे डर लगेगा। जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में सभी लोग जानते हैं कि भगवान की जो लीला है, विशेष रूप से दामोदर लीला, अब इस दामोदर लीला को भी इन शक्तियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जब छोटे से बालक हैं, करीब 2-2.5 साल के, 2 साल से 2-3 महीने अधिक, और अपनी सैया पे सो रहे हैं, सुबह का समय है, कार्तिक अमावस्या जो परसों है उसका समय, उसी दिन सुबह की प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त में मादी मैया यशोदा कुछ विशेष गायों का, जो पद्मगंधा गायें हैं, 7-8 गायें हैं वहां पर नंद भवन में, जो विशेष जड़ी बूटियां खाती हैं, विशेष घास को चरती हैं, उनका दूध को बिलोकर ऐसा विशेष माखन तैयार करना चाहती हैं जो कृष्ण को एकदम भा जाए, और जिससे कृष्ण कभी चोरी करने के लिए नहीं जाए। मैया दही बुलो रही थी, इतने में कृष्ण जाग गए, अपने सैया भवन में थे, और जाग करके अब चूंकि थोड़े बड़े हो चुके हैं तो अपने आप ही पैर पलंग से नीचे उतरे, पैरों को नीचे करके, जैसे एक बालक उतरता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसी प्रकार से धीरे धीरे चलते हुए मैया के पास आ जाते हैं। मैया के पास आते हैं, मैया तो गायन कर रही हैं, मथने में व्यस्त हैं, अब कृष्ण ने देखा कि मैया का तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है, तो कृष्ण मंथन दंड है उसको ही सीधा पकड़ लेते हैं। तो मैया जो प्रयास कर रही थी दही बिलोने का, वो बंद हो जाता है, क्योंकि अगर रस्सी वगैरह पकड़ते तो बालक के पकड़ने से रुकता नहीं, लेकिन मंथन दंड को ही पकड़ लिया तो पूरा जो उपक्रम चल रहा था, उद्यम चल रहा था, मैया यशोदा बिलो रही थी, वो सब विराम हो जाता है, रुक जाता है। मैया देखती है मेरा लाला आ गया। अब यहां से जो शक्तियों की बात है वो चालू होती है। अब भगवान का एक स्वरूप है कि वो आत्माराम है। आत्माराम का अर्थ होता है कि जिसके अंदर कभी कोई इच्छा ही ना हो। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, उनका जन्म हुआ तुरंत भागे, उनको भौतिक संसार में भोगने की कोई भी इच्छा नहीं थी। तो ये जो आत्मारामस्य मुनियो, मतलब मुनियों में भी ये गुण विद्यमान होता है, तो भगवान में क्या गुण विद्यमान होगा हम समझ सकते हैं। मतलब उनको किसी भी वस्तु की कोई भी स्पृहा नहीं है, लेकिन फिर भी इस लीला में भगवान दिखा रहे हैं, तमंकमारुण अपायत स्तनम इसने स्नुतम स्मति क्षति मुखम अतृप्त वस्त्रज जवेन सायया उससे चमाने पयसी तुझस्रते तमंकम आरूढ़म। तो भगवान अपनी मैया के अंक में आरूढ़ हो गए। क्यों हो गए? विभुक्षया, भूख के कारण। अरे भाई, जो आत्माराम है उसको भूख कब से लगने लगी? भूख नहीं लगनी चाहिए ना। लेकिन ये जो भगवान की जो लीला शक्ति है वह उनके अंदर भूख को प्रज्वलित कर देती है, जिससे लीला में संवर्धन हो। तो ये क्यों होता है? भक्त वश्यता, क्योंकि भगवान भक्ति के इतने वशीभूत हो जाते हैं, भगवान अपनी मैया यशोदा के प्रेम में इतने वशीभूत हैं कि इसके कारण से उनके अंदर भक्ति का जो आत्मरामता का गुण है उसको भी उन्होंने त्याग दिया और बुभुक्षा आ गई, भूख लग गई उनको भगवान को, इसीलिए तो स्तनपान करना चाह रहे हैं मैया का। तो यही बोल रहे हैं कि तम अंकम आरूढ़ अपायत स्तनम। तो भगवान ने दूध पिया मैया का, पीना चाह रहे हैं, तो उनके अंग पे आरूढ़ हो गए। फिर क्या हुआ? अब मैया ने अंक में तो उनको धारण कर लिया, अब दूध भी पी रहे हैं। अब भगवान में दूसरा गुण होता है पूर्ण कामता का, आत्माराम पूर्ण काम, ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। आत्माराम मतलब कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, पूर्ण काम का अर्थ होता है जितना है उसमें ही संतुष्ट है। अब भाई, जब आपको प्राप्त हो गया है दूध, तो अब क्यों आप मचल रहे हैं? अब आपको क्यों और दूध पीना है मैया का? मतलब मैया दूध पिलाती जा रही है और कृष्ण को तृप्ति नहीं हो रही है। तो जो अतृप्तता का गुण आया ये भी लीला शक्ति के माध्यम से आया। वो भी किस कारण आया? भक्त वत्सलता, कि कृष्ण भक्त वात्सल्यता में इतने अधीन हो गए हैं माता के कि उनकी जो बुभुक्षा है, भूख, वो प्राप्त समाप्त नहीं हो रही है, और इसलिए उनका जो पूर्ण कामता का जो गुण है वह भी क्षीण हो गया और उनको क्या हुआ? और भूख लग रही है, अतृप्त रह गए। तो ये दूसरा गुण उनके अंदर, मतलब ये सारे जो भगवान के गुण हैं उनमें भी विपर्यता, उनमें भी उल्टापन आ जाता है। किसके कारण? लीला शक्ति के माध्यम से, क्योंकि भक्त ने, मैया यशोदा ने इतनी भक्ति है कि वो अपने लाला को खूब दूध पिलाना चाहती हैं, खूब माखन खिलाना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। अब क्या हुआ? अब तीसरा गुण है भगवान का शुद्ध सत्व का, है ना। सत्व गुण से भी जो ऊपर होता है शुद्ध सत्व, क्योंकि भौतिक जगत में जो भी गुण होते हैं वो तीनों का एक मिक्सचर होता है, वो शुद्ध कुछ नहीं होता है। भले ही कोई कितना ही सत्वगुणी हो, थोड़ा बहुत रजोगुण तमोगुण की मात्रा होती ही है, लेकिन भगवान क्या है? शुद्ध सत्व स्वरूप है। लेकिन उनमें भी बोल रहे हैं, संजात कोपा स्फुरतारुणाधरम। संजात कोपा, कोप आ गया भगवान को, अरे मैं यहां पे सब कुछ अपना बैकुंठ, अपना गोलोक छोड़कर मैया के पास आया हूं और ये मुझे दूध ही नहीं पिला रही है, क्या मतलब हुआ? तो यहां पे उनको संजात कोपा, क्रोध आ गया भगवान को, अपने अधर ओंठ फड़फड़ा रहे हैं। स्फुरत अरुण अधरम, लाल लाल ओंठ है, एकदम फड़फड़ा रहे हैं क्रोध के मारे, अपने जो दांत है छोटे छोटे आ गए हैं उनको भी काट रहे हैं। संदस्य दधि मंथनम भाजनम भित्वा, अभी मटकी को फोड़ दिया और वहां से मृषा अश्रु दर्शना, झूठ मूठ का रो भी रहे हैं। तो अब सोचिए, भगवान में रोना, फिर भगवान में क्रोध आना। भाई, जो योगी होते हैं, मुनिंद्र होते हैं, उनमें भी क्रोध नहीं होता, तो भगवान में क्रोध कैसे आने लगा?
लेकिन भक्त वश्यता वही है कि भगवान को मैया ने इतना वशीभूत कर लिया है कि उनका जो स्वत स्वरूप स्वरूपत्व अपि भगवान में शुद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप का होने पर भी कोपेन कोप के कारण भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी लीला संपादन कर रहे हैं। यह भी किस लिए हुआ, भक्त वश्यता के कारण। तो ये जो लीला शक्ति है भगवान की, ये इस प्रकार से कार्य कराती रहती है भगवान से, मतलब जो नहीं है भगवान में वो भी उनमें आरोपित कर देती है। तो अब यहां पे भगवान शुद्ध सत्व में है लेकिन उनके अंदर क्या हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, ये लीला शक्ति का कार्य है। फिर उसके बाद मैया चली जाती है, अब मैया को लग रहा है भाई जो दूध उबाल रहा है उसको भी बचाना आवश्यक है, तो इतने में अब क्या करते हैं, ये चोरी करते हैं। तो अब सोचिए जो पूरे समग्र सृष्टि का नियामक हो, सारी श्री संपदा और जितनी संपदा अभी हम देख ही रहे थे, जितनी भी लक्ष्मी है सब उनकी अंशभूता है और सभी उनके सेवा के लिए प्रस्तुत रहती हैं, उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो यही है कि स्वराज लक्ष्मित्व अपि, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, स्वराज लक्ष्मित्व अपि चौरेण चौरेण लीला करोति, कि स्वराज लक्ष्मित्व अपि, कि पूरी लक्ष्मी है वो उनकी ही संपदा है लेकिन फिर भी चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, लीला संवर्धन के लिए, कि जिससे जो माता है उनको आनंद प्राप्त हो और जो भक्त है अन्य गोपियां है, अगर बालक चोरी नहीं करेगा तो उसमें फिर लीला में इतना आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए लीला शक्ति ऐसा प्रेरित कर रही है कृष्ण को। तो वास्तव में जो लीला शक्ति है वो राधा रानी की एक अंशभूता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो वृंदा देवी या पौर्णमासी है तो वो इस तरीके से लीला नियोजित करती है जिससे भक्तों को खूब आनंद मिले। फिर इसके बाद अब चोरी इन्होंने कर ली, उलूखल के ऊपर स्वस्तिक आसन में बैठे हुए हैं, आराम से मक्खन खा रहे हैं, कुछ कबूतरों को खिला रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, कुछ भीटों पे भी चित्रकारी कर रहे हैं, और मैया ने देख लिया। अब मैया ने यष्टि उठाई, तो अब यहां पे फिर एक गुण, अब भगवान कालों के भी महाकाल है ना, यद भयति बातोयम है ना, कैसा है श्लोक है ना, यद भयति स्वयं है, तो मतलब उनके भय से इंद्र भी डरते हैं, वायु जितने भी देवता हैं सभी डर रहे हैं, यमराज भी स्वयं डर रहे हैं है ना, तो वो भय देने वाले प्रभु अभी स्वयं भयभीत हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये लीला शक्ति का माधुर्य है, लीला शक्ति ने भगवान को अपनी लीला संपादन करने के लिए और मैया को कुछ आनंद देने के लिए, जो वात्सल्य भाव का आनंद है, ऐसा किया। तो महाकाल यम आदि भयत्वे अपि, मतलब महाकाल कालों के काल जो भगवान है शिव जी, उनको भी भय देते हैं भगवान कभी कभी, यमराज है वो भी भगवान से भयभीत रहते हैं, लेकिन यहां पर अभी भय पलानाभ्याम, भय से पलायन कर रहे हैं, भय से पलायन कर रहे हैं, मैया यष्टि लिए हुए हैं, मैया पीछे पीछे और भैया कृष्ण आगे आगे दामोदर, तो ऐसा स्वरूप। तो ये किस लिए हुआ, ये लीला शक्ति के माध्यम से ये लीला घटित हो रही है। फिर आगे बताया जा रहा है कि अब जो भगवान जो योगेंद्र मुनिंद्र हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक समाधि लगाए होते हैं फिर भी उनके मनोवेग में आते नहीं है, मन का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन भगवान का जो वेग है वो मनो अपि अधिक, मन का जो वेग है उससे भी, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मनो अग्रणायत्व अपि मात्रा बलात् ग्रहणेन, कि जो मन से भी पकड़े नहीं जाते योगेंद्र मुनिंद्र, जिन्होंने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन उन योगेंद्र मुनिंद्रों का भी जो मन है वह आपको प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन मैया ने आपको प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया, बलात् पकड़ लिया, तो बलात् ग्रहणे, जबरदस्ती पकड़ लिया। तो इसलिए यहां पे जो ये जो लीला संपादन हो रहा है ये सब लीला शक्ति कराती है। अब आगे जाके फिर मन से भी भगवान तेज हैं लेकिन उनके जो भक्त हैं उन उसको भी पकड़ लिया। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि भगवान में एक गुण है सर्वव्यापकता का। अब ठीक है चलो भाई पकड़ लिया, सब कुछ हो गया, भगवान को बांधना चाह रही हैं अब, लेकिन भगवान तो विभू है, सर्वव्यापक है। अब जो भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके शरीर से निकल रहे हैं, अब वो व्यक्ति बंद कैसे सकता है, है ना, मान लिया कि भाई से भी पलायन हो रहा है, बंद नहीं सकते, लेकिन वो भी हुआ तो बोल रहे हैं सर्वव्यापकत्व अपि बंधनेन भक्तवश्यता दर्शिता, कि सर्वव्यापकत्व अपि, भगवान सर्वव्यापक है लेकिन फिर भी मैया यशोदा का जो भक्त वात्सल्य भाव इतना प्रगाढ़ है कि उनको बंधन में डाल दिया और वह दामोदर हो गए, दामोदर। तो ये भगवान का विशेष भाव है। यहां पे जो लीला संपादित हुई है ये सारी लीला शक्ति से हुई है। अब जैसे जब मैया भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी तो भगवान के साथ एक जो शक्ति रहती है वो उसको बोलते हैं सत्य संकल्पता शक्ति। सत्य संकल्पता शक्ति मतलब भगवान जब भी कुछ सोच लें तो वह शक्ति तुरंत प्रादुर्भूत हो जाती है। इसीलिए भगवान उस दिन बंधना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कार्तिक में नियम ले रखा होता है कि हम भाई एक टाइम ही भोजन करेंगे, इतनी माला जप करेंगे, रोज दीप दान करेंगे, परिक्रमा करेंगे, अमुक अमुक श्री विग्रहों के दर्शन करेंगे, सात विग्रहों के दर्शन करेंगे, एक विग्रहों के दर्शन करेंगे, जो हम नियम ले रखते हैं। तो टीकाकार लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, इसी प्रकार से भगवान ने भी एक नियम ले रखा था कार्तिक में कि भाई रोज मुझे चोरी करनी है, रोज मुझे माखन लूटना है, रोज अपने घर पे ये काम करने हैं, तो मेरे भी कुछ नियम हैं। तो अगर मैया ने मुझे आज बांध दिया तो मैं अपने ग्वाल वालों के साथ खेलूंगा कैसे, और जो मुझे चोरी करनी है उसको मैं नियम कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो इसलिए भगवान की एक विशेष इच्छा थी कि ये रस्सी मुझे किसी भी कारण से बांध ना पाए। तो भगवान की जो सत्य संकल्पता शक्ति या विभू शक्ति है वो वहां पर प्रकट हो जाती है, और वो अनंत रस्सियां जोड़ने पर भी, क्योंकि इसलिए हर बार बोला गया है कि दो अंगली नूनम तदपि दो अंगली नूनम तदपि दो अंगली नूनम, कि दो अंगुल हर बार नून हो जा रहा है, नून हो जा रहा है। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो विभू शक्ति है या फिर सत्य संकल्प शक्ति है भगवान की, वह वहां पर बढ़ने नहीं दे रही। फिर जब भगवान, फिर भक्त का प्रयास जब लीला शक्ति देखती है, तो कहने का तात्पर्य है जो भगवान की लीला शक्ति या कृपा शक्ति, क्योंकि जो 18वां श्लोक है ये हम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान कब भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णः कृपया आसीत सौबंधने, दृष्टा परिश्रमम, जब परिश्रम को देखा, जब भगवान की कृपा शक्ति ने, तो कृपया आसीत सौबंधे, कृपया के द्वारा, यानी भगवान की जो कृपा शक्ति है वह भक्तों के ऊपर कृपा करती है। यानी अब कृपा शक्ति क्या है, जो आचार्य है वो कृपा शक्ति के द्योतक है या फिर जो वाहक है। इसलिए प्रभुपाद जी के आगे जैसे लगाते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, कृपा मूर्ति का अर्थ है कि कृपा की छोटी वस्तु नहीं है ये, इनमें छोटी मोटी कृपा नहीं है, कृपा के सिंधु है, कृष्ण कृपा सिंधु, मतलब किसी में कृपा, हम लोगों में भी कृपा है लेकिन थोड़ी मोटी है, लेकिन जो आचार्य होते हैं उनमें कृपा की मात्रा सिंधु मात्रा में होती है। तो इसलिए जब वो कृपा भी करते हैं तो भले ही जीव में सामर्थ हो या ना हो भक्ति करने की, वो भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए आचार्य कृपा बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जब कृपा शक्ति आई तब भगवान को दया आई, और कृपा शक्ति के माध्यम से भगवान की जो दुई अंगल कम हो रही थी, तो दुई अंगल का यहां पे आचार्य पाद ने बताया है कि पहला तो परिश्रमम दृष्ट्वा, माता का परिश्रम, और दूसरी जो अंगुल है जब भगवान ने वो परिश्रम देखा तो उनके अंदर कृपा शक्ति उद्भूत हो गई, कृपा शक्ति प्रकट हो गई, इसके कारण से भगवान पे बंध जाते हैं या फिर भगवान किसी भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण, मैं वाणी को यहीं विराम करूंगा, अगर किसी को भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय थोड़ा सा अधिक हो गया है।